8 दिसंबर रविवार दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। छत्तीसगढ़ में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट का नतीजा, सुरक्षा बलों के हमले में 17 निर्दोष आदिवासी मारे गए थे।
जो ग्रामीण थे, बेकसूर लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको बेरहमी से मारा गया है। जब आयोग ने ये बात बोल दिया है तो हम ये देखना चाहते हैं कि उन लोगों को सजा मिलती कि नहीं।
भारतीय उद्योगपति राहुल बजाज का दावा, मोदी सरकार में भयभीत हैं उद्योगपति।
यूपीए 2 में तो हम किसी को भी गाली दे सकते थे, आप अच्छा काम कर रहे हैं उसके बाद भी हम आपको क्रिटिसाइज ओपनली करें, कॉन्फिडेंस नहीं है कि यू विल अप्रिशिएट दैट। जो मेरे को बोलनी नहीं चाहिए पर हंस रहे लोग, चढ़ बैठे सूली पर।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। छत्तीसगढ़ में साल 2012 में बीजापुर जिले में हुई एक चर्चित मुठभेड़ पर एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों के बीच हुई उस मुठभेड़ में जिन 17 लोगों की मौत हुई थी वो माओवादी नहीं थे बल्कि सामान्य ग्रामीण थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट के जस्टिस वीके अग्रवाल की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। यह रिपोर्ट उसी आयोग की है। जब यह मुठभेड़ हुई थी तब 17 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया गया था। हांगकांग में करीब एक हफ्ते से थोड़ा शांत पड़ा विरोध प्रदर्शन आज एक बार फिर शुरू हो गया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए मार्च निकाला। आज लगभग 3 रैलियां निकाली गईं। कोवलून जिले में बाजार में प्रदर्शन करते हुए लोगों ने अपने हाथों में बैनर पकड़े हुए थे जिसमें लिखा था, कभी मत भूलो कि तुमने यह क्यों शुरू किया था। एक प्रदर्शनकारी को सुनिए। मुझे लगता है कि चुनाव और बीते कुछ महीनों से जो कुछ हो रहा है उसके बाद यह बहुत ज़रूरी है कि लोग बाहर निकलें और यह बताएं कि वो आज भी अपनी मांगों पर टिके हुए हैं। हम आज भी अपनी मांगों का समर्थन करते हैं जिसके लिए हमने इतने महीनों से संघर्ष किया है। ये थे एक महिला प्रदर्शनकारी के शब्द। माल्टा में इस तरह की आशंकाएं लगातार फैल रही हैं कि वहां के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी मामले पर चर्चा करने के लिए सत्ताधारी लेबर पार्टी ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। दरअसल माल्टा में 2 साल पहले एक खोजी पत्रकार डफने करुआना गलीजिया की हत्या कर दी गई थी। अब एक शख्स ने आरोप लगाए हैं कि इस हत्या के पीछे प्रधानमंत्री का दफ्तर शामिल था। पत्रकार के परिवार ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बीबीसी के साथ बात करते हुए डाफने की बहन कोरिना वेला ने कहा कि उनकी बहन की मौत ने माल्टा के लोगों को जगा दिया है।
It's gratifying to see that people are finally mobilizing in large numbers and you know the anger is very real and very palpable.
ये देखना बहुत सुखद है कि आखिरकार लोग भारी संख्या में हमारे साथ आ रहे हैं और पता है उनका गुस्सा बिल्कुल वाजिब है। लोगों को महसूस हो रहा है कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। हमारे देश में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं हुए हैं लेकिन अब लोग बदल रहे हैं। ये थे मृत पत्रकार डाफने की बहन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लंदन में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके आलोचक कह रहे हैं कि बीते कई सालों से ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, फिर भी उन्होंने ब्रिटेन के न्यायतंत्र को मजबूत नहीं किया। विपक्षी दलों ने ध्यान दिलाया है कि बीते एक दशक में जेल से जुड़े नियमों को काफ़ी हल्का किया गया, इसी वजह से आतंकवाद जैसे अपराधों में जेल गए शख्स भी जमानत पाने में कामयाब रहे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो इन नियमों को सख्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। सीरिया में बीते 2 दिन से सेना और चरमपंथियों के बीच चल रहे संघर्ष में कम से कम 70 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। यह संघर्ष विद्रोही लड़ाकों के अंतिम गढ़ कहे जाने वाले इदलिब इलाके में चल रहा है। 3 महीने पहले रूस की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम के बाद से यह अभी तक का सबसे बड़ा संघर्ष है। इस युद्ध की वजह से गाँव और शहर के लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सऊदी अरब ने अपने देश में मीठे पेय पदार्थों पर नए टैक्स लगाने शुरू कर दिए हैं। इसका मकसद तेल से इतर दूसरे पदार्थों से भी राजस्व इकट्ठा करना और साथ ही लोगों की सेहत का ध्यान रखना बताया गया है। आज से सऊदी अरब में मीठे पेय पदार्थों पर 50% टैक्स लगेगा। सऊदी अरब में कई लोग मोटापे के शिकार हैं, इस टैक्स से उस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। छत्तीसगढ़ में एक न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2012 में बीजापुर में सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने गांव में बैठक कर रहे लोगों पर एक तरफा हमला किया जिसमें 17 बेकसूर आदिवासी मारे गए थे। इससे पहले पुलिस ने इस मुठभेड़ में 17 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया था, लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद पुलिस के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
बीजापुर के सारकेगुड़ा और सुकमा जिले के कोट्टागुड़ा और राजपेंटा गांव से लगे घने जंगलों में पुलिस ने 28-29 जून 2012 की रात कथित मुठभेड़ में 17 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया था। इसके अलावा इस घटना में 10 गांव वाले भी घायल हुए थे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार संगठनों ने इस कथित मुठभेड़ पर सवाल उठाए थे। भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद सुधा भारद्वाज ने सबसे पहले यह सवाल उठाया था कि जिन्हें पुलिस ने माओवादी बताकर मार डाला है वे गांव के बेकसूर आदिवासी हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के जस्टिस वी के अग्रवाल की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अब जाकर सामने आई है। हालांकि रिपोर्ट अभी नियमानुसार विधानसभा में पेश नहीं की गई है। जस्टिस अग्रवाल आयोग ने 17 आदिवासियों के मारे जाने की इस घटना को लेकर कहा है कि पुलिस के बयान के विपरीत ग्रामीण घने जंगल में नहीं तीनों गांवों से लगे खुले मैदान में बैठक कर रहे थे। आयोग ने कहा है कि फायरिंग एक तरफा थी जो केवल सीआरपीएफ और पुलिस द्वारा की गई थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात से भी इनकार किया है कि इस घटना में मारे गए लोगों का माओवादियों से कोई संबंध था। इस हमले में मारे गए 3 लोगों के रिश्तेदार कोट्टेगुड़ा की कमला काका से आयोग की रिपोर्ट को लेकर हमने बातचीत की।
शुरू से यही बोलते आए हैं कि जो लोग थे, जो ग्रामीण थे, बेकसूर लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको बेरहमी से मारा गया है। मेरे परिवार से मेरा सगा भतीजा मारा गया है, और मेरे चाचा के बेटा, मेरा चचेरा भाई मारा गया है, और मेरे चचेरे बेटा के बेटी भतीजी मारी गई है।
कमला काका का कहना है कि जांच आयोग की रिपोर्ट भले आदिवासियों के पक्ष में हो, लेकिन मारे गए लोगों के परिजनों को अभी न्याय नहीं मिला है।
मैं न्याय मिल गया बोल के नहीं सोच सकती सर। जब आयोग ने ये बात बोल दिया है कि मतलब एक गलत तरीका से पुलिस वालों ने मार दिया गया है, तो हम ये जानना मतलब ये देखना चाहते हैं कि उन लोगों को सजा मिलती है कि नहीं। हम तो यही चाहते हैं उन लोगों को सजा मिलना चाहिए जो लोग ग्रामीण को मारे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई इस घटना को तब विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार में है। पार्टी के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि पूरे मामले में सरकार कानूनी राय ले रही है।
सारकेगुड़ा में तो कांग्रेस पार्टी शुरू से बहुत स्पष्ट बात करती रही है, नृशंस हत्या हुई है वहां आदिवासियों की, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, महिलाओं की। जो कांग्रेस ने आरोप लगाए वो आरोप सच साबित हुए। मंत्रिमंडल ने इस पे लॉ डिपार्टमेंट को ओपिनियन के लिए भेजा है, एटीआर रखी जाएगी विधानसभा में।
लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता और ग्रामीणों के वकीलों में से एक अमरनाथ पांडे का कहना है कि सरकार को तत्काल दोषी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए।
ये जो है ऐसा मामला नहीं है कि इसको सरकार पटल पे रखे, माने और नहीं माने का मुद्दा नहीं है। इस रिपोर्ट से ये बात प्राइमा फेसी एस्टेब्लिश हो गई है कि हत्या हुई है। तो हत्या हुई है का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है तो वहां के थानेदार की जिम्मेदारी है कि वो स्वयं से प्रार्थी बन करके उसकी एफआईआर दर्ज करे।
माना जा रहा है कि सोमवार को यह रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी, उसके बाद ही इस मामले की दशा दिशा तय होगी। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में साल 2012 में निर्दोष आदिवासियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी की जिस घटना का जिक्र अभी आपने आलोक पुतुल की रिपोर्ट में सुना, उन मृतक आदिवासियों के शव बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने अपनी आंखों से देखे थे।
देखिए, बहुत खौफनाक मंजर था, क्योंकि सबसे पहले जो पत्रकारों का दल वहां पहुंचा था उसमें मैं था, और एक वो पुल है वहां पर जो सारकेगुड़ा पुलिस स्टेशन है बासागुड़ा का, उससे ठीक लगी हुई एक नदी है जिसके ऊपर पुल है। कहा जाता है कि भारत सरकार उस पुल के इस पार तक खत्म हो जाती है और पुल के उस पार माओवादियों का की सामानांतर सरकार चलती है। वहां से हम लोग पैदल पैदल इन इलाकों में गए, पेंटागुड़ा और ये जो बासागुड़ा के राजपेंटा इलाका जो है वहां पर गए, और वहां पर देखा हमने कि मातम छाया हुआ था, लोग जो है वो गोलियों के निशान दिखा रहे थे पेड़ों के ऊपर में जहां पर गोलियां चली थी। दरअसल बीज पंडू में एक त्योहार होता है जो फसलों को लेकर होता है, उस पर वहां पर रात में बैठक चल रही थी। बैठक चलने के बाद यही मुझे गांव वालों ने बताया कि छोटे बच्चे भी थे उसमें, जो 11 साल के, 12 साल के, 14 साल के, ये उम्र के बच्चे भी थे। तो रात का वक्त था और खुला मैदान था, वो ऐसा नहीं था कि वो बहुत घने जंगलों की कोई श्रृंखला है, क्योंकि उसके बाद से फिर जंगल शुरू होते हैं। तो रात में जब गश्त निकलती है, उस वक्त में जो है ये लोग निकले थे, और चूंकि अंधेरा था, कुछ मालूम नहीं था, एक कोमोशन था, उसी में अंधाधुंध चारों तरफ से घेर के गोलियां चलाई गई, ऐसा गांव वालों का आरोप था। लेकिन सबसे जो मार्मिक बात जो सामने आई वो ये आई कि मरने वालों में वो बच्चे भी शामिल थे जो पास के ही पुलिस कैंप में जो सुरक्षा बल के जवान थे और पुलिस के जवान थे उनके साथ रोज फुटबॉल खेला करते थे। जो भी लोग मारे गए थे वो गांव के ही लोग थे, गांव के ही रहने वाले थे, और वो कहीं दूर से नहीं आए थे, वो माओवादी नहीं थे, और उनका जो है कहीं से कोई लेना देना नहीं था इस पूरे घटना से, ये मतलब इस संगठन से, माओवादी संगठन से। और यही वजह है कि लोग बहुत आहत है, उनका विश्वास गेन करना चाह रही थी। अच्छा, ये वो भी इलाके हैं जैसे आपको पता होगा कि जो लोग छोड़ छोड़ के भाग कर इलाके आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में जाकर बस गए थे, ये सुरक्षा बल और पुलिस के बीच में जो ये लगातार संघर्ष चल रहा था, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चले गए थे छोड़कर, लेकिन इस भरोसे पे वापस आए थे कि नहीं, अब इनको सुरक्षित यहाँ पर रखा जाएगा, इनको सुरक्षा दी जाएगी, और इस भरोसे पे ये वापस आए, और लेकिन यहाँ आने के बाद ये मारे गए। तो इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं जो हिंदी में बात भी नहीं करते हैं, गोंडी में बात करते हैं। वहां पर सीआरपीएफ का कैंप था उस वक्त, जो है मुझे याद है कि आईजी थे जुल्फिकर साहब, और वहां के जो डीआईजी थे, ये कहा जा रहा था कि डीआईजी का रोल सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में है, क्योंकि उनकी पत्नी भी सरकारी उसमें विभाग में कंट्रैक्ट पर डॉक्टर की नौकरी करती थी। तो बहुत सारी बातें इसमें सामने आई, हालांकि बहुत सारी चीजें स्पष्ट तभी होंगी जब रिपोर्ट सामने आएगी ये, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी।
छत्तीसगढ़ में वर्षों पुरानी अपनी आंखों देखी बता रहे थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। बीती रात भारतीय उद्योगपति राहुल बजाज एकदम से चर्चा में आ गए। राहुल बजाज ने कहा कि भारत के उद्योगपति डरे हुए हैं और इस वजह से सरकार की आलोचना करने से डरते हैं। इसके जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता कमलेश मठेनी।
मुंबई में बीती रात आयोजित ईटी अवार्ड्स कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने सोचा भी नहीं होगा कि उद्योगपति राहुल बजाज उनसे इस तरह का सवाल पूछेंगे। राहुल बजाज ने मॉब लिंचिंग और सांसद साध्वी प्रज्ञा के नाथूराम गोडसे के संबंध में दिए एक बयान पर उचित कार्रवाई न किए जाने का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि लोग आपसे डरते हैं।
ये जो माहौल है ये जरूर हमारे मन में है, कोई बोलेगा नहीं हमारे इंडस्ट्रियल फ्रेंड, आई से दैट ओपनली, पर सम बेटर रिप्लाइज विल हैव टू कम, नॉट ओनली अ डिनायल, आज बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, एक एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें ठीक है यूपीए 2 में तो हम किसी को भी गाली दे सकते थे, दैट इज अलग बात, आप अच्छा काम कर रहे हैं उसके बाद भी हम आपको क्रिटिसाइज ओपनली करें, कॉन्फिडेंस नहीं है कि यू विल अप्रिशिएट दैट, आई मे बी रॉन्ग, फाइन, बट वो हम सबको लगता है कि आई कांट स्पीक फॉर एवरीबडी, बट ये चीज है जो मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, पर हंस रहे हैं लोग चढ़ बैठे सूली पर।
इसके बाद राहुल बजाज की टिप्पणी का उत्तर देते हुए अमित शाह ने कहा कि किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
नहीं, मुझे लगता है कि आपके पूछने के बाद कोई नहीं मानता होगा कि कोई डरता है। सात अर्थ में बजाज साहब एक हवा बनाया है, और खौफ के लिए मैं इतना ही कहता हूं कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पर, हमारी सरकार पर ढेर सारे अखबारों ने बहुत कुछ लिखा है, ढेर सारे आर्टिकल्स लिखने वाले भाइयों ने बहनों ने भी बहुत सारा लिखा है और आज भी धड़ल्ले से लिख रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी के खिलाफ लिखा गया है तो हम लोगों के खिलाफ लिखा गया है, मगर फिर भी आप जो कह रहे हैं एटमोस्फियर बना है, हमें भी एटमोस्फियर को सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग बोलते भी हैं, एफिडेविट पर भी बोलते हैं और पार्लियामेंट में भी बोलते हैं, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं, ना कोई डराना चाहता है, ना कुछ ऐसा करा है जिसके खिलाफ कोई बोले तो सरकार को चिंता है, और हमें किसी भी प्रकार के विरोध की कोई डर भी नहीं है, और कोई करेगा भी तो उसके मेरिट्स देखकर हम अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे।
इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मंच पर मौजूद थे। वहीं मंच से नीचे बैठे उद्योगपतियों में राहुल बजाज के साथ मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, सुनील भारती मित्तल जैसे उद्योगपति मौजूद थे। राहुल बजाज के इस बयान से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेशनल इकोनॉमी कॉन्क्लेव के दौरान कहा था कि समाज में डर का प्रत्यक्ष माहौल है।
देयर इज ए पैल्पेबल क्लाइमेट ऑफ फियर इन आवर सोसाइटी टुडे। मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट टेल मी,
कई उद्योगपति मुझे बताते हैं कि वो सरकारी प्राधिकरणों के उत्पीड़न के माहौल में रह रहे हैं। उद्योगपति नई परियोजनाएं शुरू करने से पहले घबराते हैं, इस माहौल में ही उनके अंदर असफलता का डर रहता है।
इस बीच राहुल बजाज के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी बयानबाजी हुई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्विटर पर लिखा, कई सालों के बाद कॉरपोरेट दुनिया से किसी ने, जो विपक्ष को बहुत सलाह देते हैं, सत्ता से कुछ सच बोलने की हिम्मत दिखाई। दूसरी ओर बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने राहुल बजाज का एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, सच कहा जाए लाइसेंस राज में फलने फूलने वाले उद्योगपति हमेशा कांग्रेस के आभारी रहेंगे। जो भी हो, गृह मंत्री अमित शाह के सामने उद्योगपति राहुल बजाज ने जो बात कही, जानकार उसके गहरे मायने निकालते हैं और मानते हैं कि ये हालात एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं।
रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी। भारतीय उद्योगपति राहुल बजाज के इस बयान, इस दावे को किस तरह समझा जाए, क्या मायने निकाले जाए, इसके ये जानने के लिए मैंने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से बात की।
मेरे ख्याल में पहले भी ऐसा हो चुका है, कुछ जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने बात उठाई है कि समस्या है और वो बोल नहीं पा रहे हैं, और अरुण शौरी ने भी इसको बात को उठाया था कि बिजनेसमैन डरे हुए हैं, और यशवंत सिन्हा जी ने भी उठाया था। तो ये बात चल रही है पिछले 2-3 साल से कि बिजनेसमैन में डर का माहौल पैदा हो गया है।
जब एक उद्योगपति ये कहे कि डर का माहौल है और वो सरकार के खिलाफ आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था के हिसाब से इसे कैसे देखा जाए, आप इसे किस तरह का संकेत मानते हैं?
ये गंभीर मामला है क्योंकि अर्थव्यवस्था में गिरावट बराबर जारी है 6 क्वार्टर से, और उसके पीछे ये है कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि टैक्स टेररिज्म है, जैसे कि फ्रांस में जब हमारे रक्षा मंत्री गए थे तो वहाँ पे जो सीईओ हैं, जो इंजन मैन्युफैक्चरर हैं रफेल के, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ टैक्स टेररिज्म है, इसलिए हमें परेशानी है। एंजेला मर्केल आई थी अभी कुछ महीने पहले, उन्होंने कहा कि हमारे जो मिडिल बिजनेस हैं जर्मनी के, उनको बहुत परेशानी आ रही है। तो ये बात एक्चुअली काफी फैल सी गई है कि विदेशी जो लोग हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, देश में ये बात दबी जुबान से लोग कह ही रहे हैं। अर्थव्यवस्था जब इतनी परेशानी के दौर से गुजर रही है और उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, नहीं तो फिर रिवाइवल नहीं होगा अर्थव्यवस्था का, बहुत अहम मसला है ये।
राहुल बजाज ने जो बात उठाई है वो ये हालात एक दिन में तो पैदा हुए नहीं होंगे, धीरे 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 करके, कब से आपको लगता है कि ये सब चल रहा है जिसका नतीजा इस तरह से सामने आया है?
जो बिजनेसमैन है वो मानते हैं कि सब लोग तो चोर नहीं हैं, और जो चोर हैं उनको आप पकड़िए तो सबके क्यों अंकुश लगा रहे हैं। तो एक तरह से ये जो बात है ये कम से कम 3 साल से तो चली रही है, और अरुण शौरी जी ने तो ये पहले 4-5 साल पहले बात कही थी कि बिजनेसमैन में एक डर का माहौल बैठा हुआ है और वो बोल नहीं पा रहे हैं, और सरकार भी अपने आंकड़े मैनिपुलेट कर रही है जो दिखाने की कोशिश है कि अर्थव्यवस्था एक्चुअली इतनी खराब नहीं है जितनी की बताई जा रही है। जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि मंदी नहीं है, ये तो स्लोडाउन सिर्फ है। तो इस तरह से सरकार एक तरह से डिनायल के मोड में रही है, और बिजनेसमैन बताना चाहते हैं कि इस समय हालात बिगड़े हुए हैं, कुछ करने की जरूरत है, तो वो बता नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो इसलिए एक तरह से कहा जाए तो जो उनकी परेशानी है उसको जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो जाहिर करेंगे तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन हो जाएगा।
बहुत सामान्य व्यक्ति के हिसाब से बताइएगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी में उस देश के उद्योगपतियों की क्या भूमिका होती है?
देखिए, ऐसा है कि जो उद्योगपति हमारे देश में हैं, वो बड़े उद्योगपति हैं, मझौले हैं, छोटे हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही एक डाइवर्सिफाइड अर्थव्यवस्था है। और जो बात हो रही है इस समय, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े उद्योगपतियों की बात हो रही है कि वहां पे डर का माहौल है। जो निचले स्तर पे वहां तो और भी ज्यादा डर का माहौल है। और जो उद्योगपति होते हैं बड़े वाले, तो वो अगर देखा जाए तो हमारा जो संगठित क्षेत्र है वहां पे 55% उत्पादन है, यानी कि उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी अर्थव्यवस्था में, उसके ग्रोथ में। पर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो काम भी नहीं उपलब्ध होगा, और इन्वेस्टमेंट हमारा गिर गया है पिछले 5-6 साल में।
क्या ये कहना ठीक होगा कि उद्योगपति राहुल बजाज का जो बयान है वो एक तरह से सरकार की नीतियों और सरकार की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगाता है?
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कार्यशैली तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे सबकी राय लेनी चाहिए। पर अगर ये मान लिया जाए सरकार में कि सब कुछ हमें पता है और हम सब सही कर देंगे, तो वो सही नहीं होगा।
एक आखिरी सवाल है प्रोफेसर साहब।
जी हाँ।
ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ है पिछले 2-3-4-5 सालों में जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि इन वजहों से भारतीय उद्योगपति में डर का माहौल है, वो इस वजह से डरते हैं?
देखिए, एक तो नोटबंदी एकदम से लागू हुई और उसका बहुत बड़ा शॉक लगा अर्थव्यवस्था में। उसके बाद जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड आया, और जीएसटी के इतने कॉम्प्लिकेशन में आप देखें तो 2 साल के अंदर उसमें 1400 बदलाव आए, तो उससे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ, और सरकार ने बात सुनी नहीं कि हमें कैसे जीएसटी को सरल बनाना है। फिर जो बैंकिंग क्राइसिस है उससे फिर परेशानी का दौर और बढ़ गया। तो ये जो एक के बाद एक जो झटके लगे हैं अर्थव्यवस्था में, वो सरकार की नीतियों के चलते हुए लग रहे हैं।
ये थे आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर अरुण कुमार। बात झारखंड की। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों के लिए 5 चरणों में चुनाव हो रहा है। कल यानी 30 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान का ये सिलसिला 20 दिसंबर तक चलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की, और पहला सवाल यही पूछा कि इस बार के चुनाव में उनका गठबंधन, उनकी पार्टी है कहाँ?
एक पार्टनर कम है,
कांग्रेस, आरजेडी,
जेएमएम,
जेबीएम नहीं।
हाँ, इस मामले में जो लोकसभा में तय हुआ था उनमें से एक मिसिंग है, क्योंकि राजनीतिक दल है उनकी, उनका भी अपना एक विचार सोच है, उन्होंने निर्णय लिया है अपने तरीके से और स्वतंत्र है।
लेकिन ये दौर मिसिंग का बहुत नहीं चल रहा है? कोई कई विधायक मिसिंग हो जा रहे हैं, कुछ बीजेपी के मिसिंग हो जा रहे हैं, कुछ आजसू के, कुछ जेबीएम के,
कुछ जेएमएम के भी,
जेएमएम के भी, आपके तो दो ही गए मेरे ख्याल से।
हाँ,
तो ये जो पॉलिटिक्स है ये क्या है, क्यों भगदड़ मची पड़ी है चारों तरफ?
देखिए, भगदड़ मची पड़ी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल जो कुछ शॉप है यहाँ कुछ ज्यादा है, और मार्केटिंग हो रही है, पॉलिटिकल मार्केटिंग चल रही है, और अधिकतर कई नेता, कई लोग चुनाव लड़ने का इच्छुक रखते हैं, सो उनकी वजह से वो दुकानें भी चल पड़ती हैं।
दुकानें चल पड़ती हैं कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ इसी बीच में कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमेशा एक राजनीतिक अस्थिरता रही है। किसी भी दल को अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, 81 सीटें हैं यहाँ की। क्या यही वजह है कि जिसकी वजह से ये जो आप मार्केटिंग कह रहे हैं और खरीद फरोख वाला, क्या इस वजह से ज्यादा होता है?
ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, भाजपा ने इस परंपरा की शुरुआत की है और इस परंपरा की अंत करने की मैं कोशिश पर हूँ।
हेमंत जी, क्या मुद्दे हैं, आप मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर, क्या इश्यूज हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने इस बार, और ये जो इलेक्शन है ये पिछले इलेक्शन से कैसे डिफरेंट आप देखते हैं?
सबसे बड़ा इशू तो हमारा यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी हैं, वही बड़े सबसे बड़े इशू हैं कि 5 साल में चूंकि उन्होंने ही राज्य को चलाया है, उनके गठबंधन सहयोगी आजसू दोनों ने मिलकर चलाया है, कुछ घटनाएं ऐसी हुई है इस राज्य में कि उन घटनाओं से इस राज्य के लोगों का सर शर्म से झुकता है, और यहाँ भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त बोलने वाली डबल इंजन की सरकार।
ये डबल इंजन मैं नहीं समझ पाया,
ये भाजपा से ही ये अस्पष्ट होगा। ये डबल इंजन की जो सरकार है, एक दिल्ली में है, एक यहाँ पर है।
अच्छा, ये डबल इंजन,
ये डबल इंजन इनका जो है फॉर्मूला। लेकिन मुझे लगता है कि डबल इंजन के बीच में ये पब्लिक कहाँ है, पब्लिक की बॉगी कहाँ है, ये नहीं उनसे भी पता चल रहा है और ना हमें भी दिख रहा है।
अब आपको मिसाल के तौर पे पथलगड़ी का जो मूवमेंट हुआ है, किसी राजनीतिक दल ने जाकर एक स्टैंड नहीं लिया तो अकेला छोड़ दिया उन आदिवासियों को, क्यों राजनीतिक दल मुंह मोड़ लेते हैं सबसे?
क्या बात करते हैं, जो लड़ाई हमारे दल ने किया है ये लड़ाई अभी हमारी समाप्त नहीं हुई है, वो जंग जारी है। आज सीएनटी एसपीटी के विषय पर किसने सबसे अधिक मुखर होकर सड़कों पर उतरने का काम किया? आज अगर वो सीएनटी एसपीटी एक्ट में जो फेरबदल नहीं हो पाई तो उस भूमिका में सबसे प्रखर भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा है।
हेमंत जी, क्यों झारखंड एक चारागाह बन गया है नेताओं का और राजनीतिक दलों का इतने 19 सालों में? ये उम्मीद की गई थी कि यहां सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अलग राज्य बन जाएगा, यहाँ के लोगों को एक अपनी एक आइडेंटिटी मिलेगी, लेकिन ये तो फिर पहले से भी हालात बदतर जैसे दिखते हैं। पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ।
देखिए, इस राज्य में राज अलग हुए 19 साल हो गए, 19 साल में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सरकारें चलाई है, और अभी 5 साल तो पूरे ताकत के साथ
सभी ने चलाई है सरकारें यहाँ।
ऐसी बात नहीं, अगर आप देखेंगे आज के जीडीपी और जब हम लोग सरकार में थे उस समय की जीडीपी और उस समय राज्य की इकोनॉमिकल सिचुएशन और आज की इकोनॉमिकल सिचुएशन में बहुत फर्क मिलेगा। उस समय की जीडीपी कई गुना बेहतर थे आज के समय से। आज क्यों ऐसी हालत है जबकि डबल इंजन की सरकार है?
तो बताइए, क्या भविष्य देखते हैं फिर झारखंड का, आप क्या कहां जाएगा झारखंड?
देखिए, नेतृत्व करने वाला इस राज्य पे हो तब ना, यह नेतृत्व थोड़ी यहाँ बतौर मुख्यमंत्री किया जा रहा है, ये तो एक रबर स्टाम्प के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर कोई सोच कोई विजन होता तो मुझे लगता है राज का चेहरा आज के दिन में कुछ और होता, लेकिन 5 सालों में जिस तरीके से रघुवर जी का शासन रहा मुझे लगता है कि ये वर्स्ट सरकार पूरे 19 सालों की है। हालांकि बीजेपी की भी सरकार रही है इससे पहले, लेकिन ये पूरे 19 सालों का वर्स्ट व्यवस्था रहा और इन्होंने बड़ी बुरी तरीके से राज्य को परेशान किया।
आपने घोषणा की कि 5 लाख रोजगार सृजित होंगे और बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशन है जीडीपी की आप बात कर रहे हैं स्टेट की, कैसे मैनेज कर पाएंगे अगर आपकी सरकार बनी?
एक बार आने तो दीजिए, फिर देखिएगा। सिर्फ एक कॉम्पोनेंट में हाथ लगेगा तो जो चीजें हमने पब्लिकली कहा है उसका 50% समस्या का समाधान हो जाएगा।
ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, जो दावा कर रहे थे सत्ता में आए तो राज्य की 50% समस्याओं का समाधान कर देंगे। और अब खेल समाचारों के लिए आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी संदीप, अगर सबसे पहले शुरुआत करें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एडिलेड में दूसरे डे नाइट टेस्ट मैच की, तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर के 335 नाबाद रनों की बदौलत अपनी पहली पारी 3 विकेट पर 589 रन बनाकर घोषित की थी, उसके बाद पाकिस्तान की पहली पारी 302 रन पर सिमटी। हालांकि यासिर शाह ने 113 रन बनाए जिसकी वजह से स्कोर अच्छा नज़र आ रहा है, वरना एक समय तो 100 रन से भी कम स्कोर पर पाकिस्तान ने अपने 6 विकेट खो दिए थे। बाबर आजम ने 97 रन बनाए, उसके बाद पहली पारी के आधार पर 287 रन से पिछड़कर फॉलो ऑन को मजबूर होकर पाकिस्तान ने दूसरी पारी में भी अपने 3 विकेट 39 रन पर खो दिए। ऐसी हालत को लेकर वहां पर मौजूद हैं एडिलेड में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज रमीज राजा, वो कहते हैं
वार्नर की ट्रिपल हंड्रेड से कोई ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वन साइडेड अफेयर था, वो कंपटीशन चाह रहे थे, वो चाह रहे थे चले पाकिस्तान अगर बॉल के साथ स्ट्रगल किया है तो बल्ले के साथ खड़े हों, मगर बल्ले के साथ भी बिल्कुल फजूल बैटिंग, ना फुटवर्क, ना कोई अकल, सेशन खेलने की तैयारी, तो ये सबको अपनी गेम ऊंची करनी पड़ेगी।
कहाँ तक ऊंचा करें, तो पाकिस्तान के जो पूर्व कप्तान है रमीज राजा उनका गुस्सा जायज लगता है। उधर सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के पास मौका था, खासकर पुरुष एकल वर्ग में, कि वो खिताबी जीत हासिल करते, लेकिन उनको हाथ से फिसल गई क्योंकि भारत के सौरभ वर्मा फाइनल में चीन ताइपे के वांग जुवेई से 21-15, 21-17 से हार गए। और दूसरी तरफ स्पेन की कैरोलिना मारिन जब भी भारत में अपने कदम रखती हैं तो वो कई बार कह चुकी हैं ये तो अपने घर जैसा लगता है, इतना समर्थन उन्हें मिलता है, और इसका पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने एकल वर्ग का फाइनल में थाईलैंड की फितेपोन चाइवान को 21-12, 21-16 से बात दी। उधर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज तीसरे दिन इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट खोकर 269 रन बनाए, जबकि इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 375 रन पर समाप्त हुई थी।
आदेश कुमार गुप्त से खेल समाचारों के बाद चलते चलते मुख्य समाचार पुनः नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। छत्तीसगढ़ में एक न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट से पता चला है कि साल 2012 में बीजापुर जिले में सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में माओवादियों की जगह ग्रामीणों की मौत हुई थी। हांगकांग में करीब एक हफ्ते से थोड़ा शांत पड़ा विरोध प्रदर्शन आज एक बार फिर शुरू हो गया, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। कांगो गणराज्य के स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उत्तरी किवू प्रांत में कथित इस्लामिक हमलावरों ने 14 लोगों की हत्या कर दी है।
माल्टा में 2 साल पहले एक खोजी पत्रकार की हत्या के मामले में प्रधानमंत्री दफ्तर के शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। इसके चलते माल्टा के प्रधानमंत्री पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है। लंदन में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। आलोचकों का कहना है कि बीते एक दशक में ब्रिटेन में जेल से जुड़े नियमों को कमजोर किया गया। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण नमस्कार भारत, भारतीय समय अनुसार, समय जानते हैं आप, सुबह 6:30। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।